हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कम उम्र में ही अनामिका इतनी ज़्यादा समझदार और शार्प हो गई थी कि वो हर चीज़ गहराई से समझने लगी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कम ही आती थी, लेकिन इन दिनों वो सच में दिल से मुस्कुरा रही थी। लेकिन अब वो पूरी तरह से बच्चों से हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू कर रही हो और पहले वाली अनामिका कहीं दब सी गई हो। वहीं दूसरी ओर, जैसे ही दादाजी ने अनामिका को बताया कि बलबीर जी आ रहे हैं, अनामिका खुश हो गई। वो बोली, अरे वाह दादाजी, वैसे भी मुझे वो काफ़ी पसंद हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आपने मुझे उनसे पहले क्यों नहीं मिलवाया। आप भी ना, आपने कितनी सारी बातें मुझसे छुपाई हैं। अनामिका को मुंह फुलाते देख दादाजी मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, तुम मेरे पास रहे ही कब? कभी किसी डर की वजह से, कभी किसी और कारण से तुम मुझसे दूर रही। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा। फिर तुम आरफ को ढूंढने के लिए निकल गई। बताओ मुझे कब मौका मिला तुम्हें सबसे मिलवाने का? फिलहाल तो अब मेरी बच्ची मेरे पास है और इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। अब मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा, ठीक है? ये सुनकर अनामिका मुस्कुरा दी। फिर दादाजी ने कहा, एक काम करो, झलक को भी जाकर इन्फॉर्म कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई प्लान बनाकर बाहर निकल जाए। ये सुनकर अनामिका ने हल्का सा चौंकते हुए कहा, लेकिन झलक तो है ही नहीं। दादाजी हैरानी से बोले, क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तो वो अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी, मैंने खुद उसके लिए कॉफ़ी भिजवाई थी। अनामिका बोली, हाँ दादाजी, मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी लाडली किसी ज़रूरी काम से अपना हेलमेट उठाकर निकल गई है, वो बाइक लेकर गई है। ये सुनकर दादाजी हैरान रह गए, बोले, लेकिन वो अचानक इतनी जल्दी कहाँ चली गई? अनामिका ने कंधे उचकाते हुए कहा, अब मैं क्या जानूँ, मैंने उसे पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आप तो जानते हैं आजकल वो कितनी ज़्यादा खड़ूस और टाइपसी हो गई है। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ज़रूर वो किसी ज़रूरी काम से ही गई होगी, वरना झलक लापरवाह नहीं है। ये कहकर दादाजी झलक को कॉल करने लगे। उधर झलक का इरादा तो आराम से बैठकर अपना काम करने का था, लेकिन तभी उसने अचानक कुछ देखा और उसे आदित्य राणा को कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वो काफ़ी देर से आदित्य को कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन आदित्य उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। झलक काफ़ी हद तक इरिटेट हो गई। उसने सोचा कि उसे सीधे राणा मेंशन जाकर आदित्य से मिलना चाहिए। झलक फुल स्पीड में बाइक चलाते हुए आदित्य के मेंशन पहुंच गई, लेकिन उसके पहुंचने से कुछ देर पहले ही अभय, कबीर और बलबीर मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल चुके थे। वॉचमैन झलक को अच्छी तरह पहचानता था, इसीलिए उसने तुरंत गेट खोल दिया। झलक अंदर गई और चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी आदित्य दिखाई नहीं दिया। वो सच में सोच में पड़ गई कि आखिरकार मिस्टर राणा है कहाँ। उसने ऑफिस में फ़ोन करके भी कन्फर्म कर लिया था कि वो घर पर ही हैं, लेकिन आदित्य फ़ोन नहीं उठा रहा था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना था, इसीलिए बिना देर किए झलक सीधे उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी। पूरे मेंशन में इस वक्त सिर्फ कुछ नौकर ही मौजूद थे। जब झलक ने उनसे आदित्य के बारे में पूछा तो उन्होंने उसके कमरे की ओर इशारा कर दिया। झलक धीरे धीरे आदित्य के कमरे की ओर बढ़ी। उस वक्त आदित्य ने अपने कमरे में अंधेरा कर रखा था, बहुत ही कम रोशनी थी। वो फ्लोर पर बैठा हुआ गहरी मायूसी में डूबा था। झलक का बर्ताव उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। झलक ने अंदर जाकर आवाज़ लगाई, मिस्टर राणा? लेकिन आदित्य अपनी गहरी सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे झलक की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। झलक ने अंदाजे से स्विच ढूंढकर लाइट ऑन करने की कोशिश की। उसने दीवार के दोनों साइड टटोलकर देखा, लेकिन उसे कोई स्विच नहीं मिला। अंधेरे में उसे साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसी बीच आदित्य, जो फ्लोर पर ही बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ था। झलक इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ी और नीचे की ओर ध्यान नहीं दिया। अचानक वो आदित्य की टांगों से टकरा गई। आदित्य भी एकदम से चौंक गया। झलक अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और सीधा आदित्य के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ी। गिरते ही उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई, क्योंकि उसके घुटनों और कोहनी में चोट लग गई थी। आदित्य एकदम से खाबों से बाहर आया और हैरानी से बोला, कौन हो तुम? उसी वक्त कमरे की ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम ने मूवमेंट डिटेक्ट किया और लाइट ऑन हो गई। जैसे ही रोशनी फैली, आदित्य ने अपनी बाहों में गिरी हुई झलक को देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आदित्य कुछ पल तक बस उसे देखता ही रह गया। उसके मन में अजीब सा ख्याल आया, क्या वो सपना देख रहा है या अभी भी किसी ख्याल में खोया हुआ है? वो कब से बैठा झलक के बारे में ही सोच रहा था और अचानक वही झलक उसकी गोद में आ गई। उसे सब कुछ अविश्वसनीय लगने लगा। उधर झुंझलाकर बोली, मिस्टर राणा, होश में हैं आप? क्या आपने दारू पी रखी है? इस तरह अंधेरे में बैठकर कोई रहता है और इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हैं? आपके पास जरा सी भी अक्ल है या नहीं? आपने अपना फ़ोन कहाँ रख रखा है? क्या आप मेरे मैसेज, कॉल या ईमेल चेक नहीं कर सकते? कब से मैं आपको लगातार फ़ोन और मैसेज कर रही हूँ, आखिर ध्यान कहाँ है आपका? झलक बिना आदित्य को बोलने का मौका दिए उसकी क्लास लेती जा रही थी। आदित्य अब भी हैरानी में था। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि झलक सच में उसकी बाहों में है। तभी झलक ने सी की हल्की सी आवाज निकाली और बोली, आपकी वजह से मुझे चोट लग गई है, देखिए मेरे घुटने पर भी चोट आई है। आदित्य की नज़र जैसे ही झलक के घुटने पर गई वो सच में घबरा गया। झलक ने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, ऊपर टॉप और जैकेट। गिरने की वजह से उसके घुटने की त्वचा छिल गई थी और हल्का सा खून भी निकल आया था। उसने अपनी बाजू मोड़कर कोहनी भी दिखाई जो बुरी तरह रगड़ खा गई थी। आदित्य फिक्र में बोला, ओ शिट, ये क्या हो गया आपको? प्लीज प्लीज एक मिनट आप उठिए। नहीं रुकिए, मैं उठाता हूँ। झलक उठने की कोशिश करने लगी लेकिन घुटनों में दर्द की वजह से ठीक से खड़ी नहीं हो पाई। फर्श पर जोर से लगने की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। तुरंत आदित्य उठा और उसने झलक को संभालते हुए अपनी बाहों में थाम लिया। उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठाया और बोला, प्लीज मिस मल्होत्रा आप एक मिनट चुपचाप यहाँ बैठिए। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और बड़े ही सधे हुए अंदाज में झलक के घाव साफ करने लगा। उसके हाथों में सावधानी थी और आंखों में साफ चिंता। झलक को सच में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। आदित्य की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और बोली, रहने दीजिए मिस्टर राणा, मैं खुद कर लूंगी। ये बताइए आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने इतने कॉल और मैसेज किए, कोई जवाब नहीं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तभी आदित्य का ध्यान अपने फोन पर गया। फोन बेड के कोने पर पड़ा था और साइलेंट मोड पर था। वो अपने ख्यालों में इतना डूबा था कि उसने नोटिफिकेशन देखे ही नहीं। जैसे ही उसने फोन उठाकर देखा उसमें झलक की 30 से 40 मिस्ड कॉल्स पड़ी थीं। वो थोड़ा संजीदा होकर बोला, लेकिन मिस मल्होत्रा आपने मुझे इतने फोन क्यों किए और इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम था? झलक तुरंत बोली, मिस्टर राणा मैंने कैमरों के जरिए हमारी साइट चेक की है जहाँ ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहाँ 3 वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहे, वे या तो दारू पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं। पिछले 2.5 घंटे से उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या आपको लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो पाएगा? शायद आप भूल रहे हैं, सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 15 दिन के अंदर अगर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो हमें कोई फायदा नहीं होगा और मैं बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड से पहले अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ।
झलक की बात सुनकर आदित्य तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा, आप फिक्र मत कीजिए मिस मल्होत्रा, मैं अभी चेक करता हूँ। उसने तुरंत अपने सिस्टम से लाइव फुटेज चेक की। सच में कुछ लोग एक कोने में बैठकर शराब पी रहे थे और कुछ काम छोड़कर खाने पीने में लगे थे। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ आ गया कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। काम करने की तो उन्हें बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी। ये देखकर आदित्य का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में बोला, इन लोगों को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। मैं अभी जाता हूँ और अभी के अभी इनकी खबर लेता हूँ। तभी झलक बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आदित्य थोड़ा सा चिंतित होकर बोला, लेकिन आप इस हालत में कैसे जा सकती हैं? आपको पहले ही चोट लग चुकी है, अगर आप साथ जाएंगी तो परेशानी बढ़ सकती है। रहने दीजिए मिस मल्होत्रा, मैं जाकर सब संभाल लूंगा। उन्हें अच्छी खासी सजा भी दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो फायर भी कर दूंगा। मुझे अपने काम के लिए सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड लोगों की ज़रूरत है। झलक तुरंत बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, इस छोटे मोटे दर्द की मुझे आदत है। मैं भी आपके साथ चलूंगी और वैसे भी मैं बाइक से आई हूँ तो हम दोनों मेरी बाइक से चलते हैं। कोहनियों में चोट है इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको बाइक चलानी आती है तो आप चला लीजिए। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। वो बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप एक पेन किलर ले लेती तो शायद दर्द थोड़ा कम हो जाता। झलक ने सख्त आवाज में कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इस दर्द की मुझे आदत है। ये कहकर वो उठने लगी लेकिन घुटने में तेज दर्द उठा और वो फिर से बेड पर बैठ गई। आदित्य तुरंत उसके पास आया। उसने उसकी कमर को हल्के से थामा और उसे खड़ा करने की कोशिश की। बोला, मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग और ब्रेव हैं और आपको हर तरह के दर्द की आदत है, लेकिन मुझे भी तो आपकी थोड़ी सी मदद करने दीजिए। ये कहकर उसने बिना और कुछ बोले झलक को दोबारा अपनी बाहों में उठा लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। घर के स्टाफ और नौकर इधर उधर खड़े होकर ये दृश्य देखने लगे। पहली बार उन्होंने अपने बॉस की बाहों में किसी लड़की को देखा था। सबकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। आदित्य झलक को बाहर लेकर आया। झलक की बाइक देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने झट से हेलमेट पहना, दूसरा हेलमेट झलक को पहनाया, फिर खुद बाइक पर बैठ गया और बोला, मिस मल्होत्रा आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए। झलक ने बेपरवाही से जवाब दिया, आप मेरी फिक्र मत कीजिए मिस्टर राणा, प्लीज बाइक चलाइए। झलक की ये बेपरवाह अदा देखकर आदित्य मन ही मन बोला, पता नहीं कितनी खड़ूस है लेकिन इसकी यही खड़ूसपन मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने बाइक स्टार्ट कर दी। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए स्टोरी मणियां, और प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और अपना साथ बनाए रखें।